ब्रह्मांड के निर्माण, आसमान के विस्तार और समुद्रों के बनने से शुरू होने वाली कहानी, मतलब उत्पत्ति की कहानी, किसी आसमान छूती चोटी पर खत्म नहीं होती।
हाँ, ये एक बहुत ही
बल्कि मिस्र के एक धूल भरे गोदाम में रखे एक लकड़ी के तबूत पर आकर रुक जाती है।
सही का एक अजीब सा अधूरा मोड़ है ये।
बिल्कुल, और इस गहरे विश्लेषण में मैं यही सोच रही थी कि आखिर इतनी विशाल शुरुआत एक आम से लकड़ी के बक्से पर आकर क्यों रुक गई?
और इस किताब की यही खासियत है। डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज ने अपने 25वें अध्याय लेख में इस बात पर बहुत गहराई से गौर किया है।
हाँ, उनके नोट सच में कमाल के हैं।
बिल्कुल, उन्होंने बताया है कि उत्पत्ति की कहानी का अंत एक पूर्ण विराम नहीं है, ये आगे आने वाले एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है।
एकदम सही।
इस अध्याय में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि याकूब और उनके बेटे यूसुफ के आखिरी दिन आखिर किस तरह आने वाली सदियों का इतिहास तय करते हैं।
यानी ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती?
नहीं नहीं, ये एक पूरे राष्ट्र की नींव बन जाती है।
तो चलिए इस अधूरी सी लगने वाली कहानी की पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। मौत और विरासत के इस दौर में एक ऐसी घटना होती है जो उस जमाने के नियमों को पूरी तरह उलट कर रख देती है।
आप अध्याय 48 की बात कर रही हैं ना?
हाँ बिल्कुल। याकूब अपने जीवन के अंतिम चरण में है, उनकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, और यूसुफ, जो अब मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो अपने दो बेटों को याकूब के पास लाता है,
मनासे और इफ्राइम को।
सही, और यहाँ एक बहुत ही असामान्य फैसला लेते हैं। वो इन दोनों बच्चों को अपने बड़े बेटों के बराबर का दर्जा देकर गोद ले लेते हैं।
ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी,
है ना? मतलब इसको अगर आज के जमाने से समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ अपने पुराने और सीनियर मैनेजर्स को बाईपास करके किसी दो नए जूनियर एम्प्लॉइज को सीधा अपना उत्तराधिकारी बना दे।
ये बहुत सटीक उदाहरण है। इस फैसले की गहराई को समझने के लिए हमें उस समय की स्थिति को देखना होगा। देखिए, मनस्से और एफ्राइम दोनों का जन्म मिस्र में हुआ था। उनकी माँ एक मिस्री महिला थी,
एक बड़े मंदिर के पुरोहित की बेटी थी वो।
बिल्कुल, यानी ये दोनों बच्चे आधी मिस्री परंपराओं और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के बीच पले बड़े थे। इन्हें सीधे तौर पर इसराइल के मुख्य वंश में शामिल करना एक बहुत बड़ा कदम था।
पर याकूब तो सिर्फ उन्हें अपना नहीं रहे थे, वो एक प्रथा को भी तोड़ रहे थे।
वही सबसे हैरान करने वाली बात है। जब यूसुफ अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद के लिए याकूब के सामने लाता है तो वो एक क्रम तय करता है।
वो चाहता था कि मुख्य आशीर्वाद बड़े बेटे मनस्से को मिले।
सही कहा, और इसलिए वो बड़े बेटे को याकूब के दाएं हाथ की तरफ खड़ा करता है,
क्योंकि दाया हाथ हमेशा से ताकत और मुख्य आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता रहा है, और छोटे बेटे को बाएं हाथ की तरफ रखता है।
पर यहां कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। याकूब अपने दोनों हाथ आपस में बदल लेते हैं,
क्रॉस कर लेते हैं।
हाँ, वो अपना दायां हाथ छोटे बेटे एफ्रीम के सर पर और बायां हाथ बड़े बेटे मनस्से के सर पर रख देते हैं।
ओ वाओ, यूसुफ को तो बहुत गुस्सा आया होगा इस पर।
गुस्सा भी और डर भी। उसे लगा कि उसके पिता की आंखें कमजोर होने के कारण उनसे भयंकर भूल हो रही है। वो हाथ वापस ठीक करने की कोशिश करता है,
पर याकूब इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे ज्ञात है मेरे बेटे, मुझे ज्ञात है।
इस पूरी स्थिति में ना एक बहुत ही गहरी विडंबना छिपी है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं।
ओ, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रही हैं। याकूब ने खुद अपने पिता की आंखों की कमजोरी का फायदा उठाया था।
बिल्कुल, उन्होंने धोखा देकर अपने बड़े भाई एसाऊ का आशीर्वाद छीन लिया था। पर इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है, यहाँ कोई धोखा नहीं है।
भले ही याकूब की शारीरिक आंखें कमजोर हो चुकी थीं, पर उनकी आध्यात्मिक दृष्टि, उनकी समझ बिल्कुल साफ थी।
एकदम साफ, वो पूरे होशो हवास में और पूरी आध्यात्मिक समझ के साथ इस परंपरा को बदल रहे थे। ये एक क्रम है जो इस किताब में बार बार दिखता है।
आबेल को काइन से ऊपर रखा गया, आइजैक को इश्माइल से ऊपर,
याकूब को ईसाऊ से ऊपर, और अब एफ्राइम को मनासे से ऊपर। ये दिखाता है कि ईश्वर की कृपा और चुनाव किसी की श्रेष्ठता या मेरिट पर आधारित नहीं है,
ये पूरी तरह से उसके प्रेम और अनुग्रह पर टिका है। तो परिवार के इस छोटी सी कोठरी से निकलकर अब कहानी एक विशाल रूप लेने लगती है।
हाँ, अध्याय 49 में।
बिल्कुल, यूसुफ के बेटों को आशीर्वाद देने के बाद याकूब अपने सभी 12 बेटों को अपने बिस्तर के पास बुलाते हैं
ताकि वो उन्हें बता सकें कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा।
यहाँ से बात एक व्यक्तिगत आशीर्वाद से निकलकर एक राष्ट्रीय भविष्यवाणी में बदल जाती है ना?
डॉक्टर मैथ्यूज इसमें एक बहुत नया पहलू जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि इस जगह पर आकर भाषा का ढंग बिल्कुल बदल जाता है, ये कविता का रूप ले लेती है।
अच्छा।
हाँ, याकूब एक एक करके अपने बेटों के चरित्र और उनके पुराने कर्मों का चित्रण करते हैं और उसके आधार पर उनका भविष्य तय करते हैं।
जैसे सबसे बड़े बेटे रूबन ने जो अनैतिक व्यवहार किया था उसकी वजह से वो अपना मुख्य अधिकार खो देता है।
सही कहा। फिर सिमियन और लेवाई की बारी आती है जिन्होंने गुस्से और हिंसा में डूबकर एक पूरे नगर को तबाह कर दिया था।
याकूब उनके क्रोध को श्राप देते हैं और कहते हैं कि वो इसराइल की जमीन में बिखर जाएंगे। पर एक सेकंड रुकिए।
जी कहिए।
जब एक पिता अपनी मौत के बिस्तर पर अपने बच्चों को बुला रहा है आशीर्वाद देने के लिए, तो रूबन और सिमियन को जो मिला वो किसी एंगल से आशीर्वाद नहीं लगता।
ये उलझन किसी को भी हो सकती है।
किसी का अधिकार छीन लेना या जमीन में बिखर जाने का श्राप देना, इसको हम आशीर्वाद कैसे कह सकते हैं?
अगर हम इसको एक बड़े पैमाने पर देखें तो मूल भाषा का अध्ययन एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। याकूब ने किसी भी बेटे को वंश से बाहर नहीं निकाला।
सभी 12 बेटे इसराइल का हिस्सा बने रहते हैं।
बिल्कुल। हर आशीर्वाद उनके व्यक्ति का चरित्र और उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुरूप था। लेवी का ही उदाहरण ले लीजिए।
हाँ, उनके साथ क्या हुआ आगे?
लेवी की जनजाति को सच में इसराइल में बिखरा दिया गया। उन्हें बाकी जनजातियों की तरह कोई एक बड़ी जमीन नहीं मिली।
उन्हें तो शायद 48 शहर दिए गए थे ना?
सही पकड़ा। पर यही बिखराव आगे चलकर एक अनुग्रह में बदल गया, क्योंकि उनका झुकाव उत्साह और उग्रता की तरफ था। ईश्वर ने उन्हें पुरोहित के काम में लगा दिया।
ओ वाह।
यानी धार्मिक नेतृत्व।
हाँ।
वो पूरे राष्ट्र में बिखर गए ताकि हर जगह ईश्वर के नियम सिखा सके। जो चीज हिंसा का कारण बन सकती थी वही राष्ट्र को आध्यात्मिक रूप से जोड़े रखने का माध्यम बन गई।
कमाल की बात है कि कैसे किसी के सबसे बड़ी कमजोरी को भी एक सही दिशा मिल सकती है। और इसी क्रम में जब बड़े भाई अपना मौका खो देते हैं तो चौथे भाई यहूदा का उत्थान होता है।
यहूदा को याकूब एक शेर का बच्चा कहते हैं।
एक ऐसी भविष्यवाणी जहां बताया गया है कि राजदंड यानी शासन का अधिकार कभी भी यहूदा के वंश से दूर नहीं जाएगा।
ये सीधा सीधा एक भविष्य के राजा की ओर इशारा है। यहूदा की तस्वीर एक ऐसे शेर की है जो अपना शिकार करने के बाद आराम कर रहा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे जगा सके।
अखंड शक्ति का प्रतीक। और इसमें एक बहुत ही गहरा शब्द आता है, शिलो, है ना?
हाँ, ये कहा गया है कि शासन का अधिकार तब तक यहूदा के पास रहेगा जब तक कि शिलो ना आ जाए। सदियों से विद्वानों में इस पर चर्चा होती रही है।
इस शब्द के कई अर्थ निकालने की कोशिश की गई है। मतलब मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग मानते थे कि ये किसी जगह का नाम है या शासक का नाम,
और कुछ का मानना था कि ये किसी महान राजा के सामने लाया जाने वाला धन या ट्रिब्यूट है।
पर डॉक्टर मैथ्यूज और कुछ आधुनिक अनुवादों के हिसाब से इसका अर्थ कुछ और ही निकलता है।
CSB और NIV अनुवाद बताते हैं कि इसका अर्थ है जिसका इस पर वास्तविक अधिकार है जब तक वो ना आ जाए।
ये ट्रांसलेशन सबसे सटीक लगती है।
बिल्कुल। यह एक वादा था कि यहूदा के वंश से एक ऐसा राजा आएगा जिसका पूरी सृष्टि पर पूर्ण अधिकार होगा। यह आगे चलकर दाऊद के राजवंश और अंत में नए नियम में एक आदर्श राजा की ओर इशारा करती है।
याकूब की ये भविष्यवाणियां आने वाली सदियों का नक्शा थे, और इन्हीं शब्दों के साथ याकूब अपनी आखिरी सांस लेते हैं।
अध्याय 50 में आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
हाँ, उनकी मौत के साथ ही कहानी इन बड़े बड़ी भविष्यवाणियों से निकलकर अचानक फिर से मौत, शोक और डर की हकीकत पर आ गिरती है।
याकूब का अंतिम संस्कार किसी साधारण भेड़ बकरी चराने वाले की तरह नहीं होता। उन्हें एक मिस्री सम्राट जैसी विदाई मिलती है।
मिस्री लोग उनके शव को 40 दिन तक एम्बाम करते हैं। ये तो सिर्फ शाही परिवारों के लिए होता था,
ताकि शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। और फिर 70 दिन तक पूरा मिस्र शोक मनाता है।
एक आम आदमी के लिए 70 दिन का शोक, जबकि मिस्र के राजा के लिए 72 दिन का शोक होता था। ये दिखाता है कि यूसुफ की ताकत उस समय कितनी ज्यादा थी।
और जब ये विशाल शोक सभा केनान की धरती पर पहुंचती है, वहां के लोग हैरान रह जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक विदेशी की मौत पर भयंकर शोक मना रही थी।
यकूब को मचपिला की गुफा में दफनाया जाता है, वही गुफा जहां अब्राहम, सारा, आइजैक, रिबेका और लिया को दफनाया गया था।
ये गुफा एक प्रतीक थी कि चाहे वो जहां भी रहें, उनका आखिरी ठिकाना वही जमीन है जिसका वादा उनसे किया गया था।
पर यहां पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी उदास हो जाती है। जैसे ही ये शाही अंतिम संस्कार खत्म होता है, पुराने घाव फिर से रिसने लगते हैं।
यूसुफ के भाइयों के अंदर का डर फिर से जाग उठता है।
हाँ, उन्हें लगता है कि अब तक जो क्षमा थी वो सिर्फ पिता के जीवित होने की वजह से थी। एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स के रूप में देखें तो भाई उस पुराने गिल से बाहर ही नहीं निकल पाए थे।
उन्हें लगता है कि यूसुफ अब उनसे बदला लेगा। वो आकर यूसुफ के आगे झुक जाते हैं और खुद को उसका गुलाम कहते हैं।
जो यूसुफ के बचपन के सपनों को पूरा करता है। पर यूसुफ यहाँ कोई जीत का जश्न नहीं मनाता, वो रोता है।
उसके रोने का कारण बहुत गहरा था। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके भाई अभी भी उसके दिल को नहीं समझ पाए थे।
वो उसकी क्षमा को एक लेन देन समझ रहे थे।
बिल्कुल, उन्हें समझ ही नहीं आया कि यूसुफ का दिल सच में बदल चुका था।
और तभी यूसुफ एक ऐसी बात कहता है जो इस कहानी का सार है। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए बुरा सोचा था, पर ईश्वर ने इसको भलाई में बदल दिया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके।
इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या हम सच में विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारी गलतियों और लोगों के बुरे इरादों का इस्तेमाल करके भी एक भलाई का मास्टर प्लान बना सकता है?
यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने और गुलाम बनाने की जो साजिश रची थी, वही साजिश आगे चलकर उन्हें भयंकर भुखमरी से बचाने का रास्ता बन गई।
यूसुफ का किरदार यहाँ एक मध्यस्थ, एक बचाने वाले के रूप में सामने आता है।
जी,
जो बाद में आने वाले आदर्श मध्यस्थ की तरफ इशारा करता है,
जो मनुष्य और ईश्वर के बीच एक सेतु बनते हैं।
और इसी सच्ची क्षमा के साथ साल गुजरते हैं। यूसुफ की खुद की मौत का समय आता है 110 साल की उम्र में,
और वो मरने से पहले एक शपथ लेता है जो अगली पूरी किताब यानी निर्गमन की नींव रखती है।
वो ये नहीं कहता कि उसे तुरंत कनाल ले जाकर दफना दिया जाए। नहीं, वो कहता है कि ईश्वर जरूर तुम्हारी मदद को आएगा और तुम्हें इस जमीन से निकालकर उस जमीन में ले जाएगा जिसका वादा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था।
और जब ऐसा हो तो मेरी हड्डियों को यहां से अपने साथ ले जाना।
उसे एम्बाम करके मिस्र में एक ताबूत में रख दिया जाता है
और बस उत्पत्ति की किताब वही खत्म हो जाती है। एक छोटे से ताबूत में बंद एक बहुत बड़ा वादा।
जिनेसिस एक अधूरे वादे की उम्मीद पर खत्म होती है। ये सोचना जरूरी है कि इसराइल की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि एक भविष्य की तरफ इशारा है।
तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे याकूब के आशीर्वाद और यूसुफ की क्षमा ने एक पूरे राष्ट्र की नींव रखी, और कैसे चुनाव मेरिट पर नहीं प्रेम पर आधारित था,
और वो ताबूत एक मुसलसल याद दहानी था।
वही सबसे बड़ी बात है। जरा सोचिए, सदियों तक जब भी इसराइल के लोग मिस्र में गुलाम थे, उन्होंने उस ताबूत को देखा होगा। वो ताबूत उनके लिए जमीन में दफनाया गया कोई अंत नहीं था,
वो जमीन के ऊपर रखा गया एक वादा था।
बिल्कुल, जो उन्हें याद दिलाता था कि उनका असली घर कहीं और है। क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ अधूरी चीजें हैं जो असल में किसी आने वाले बेहतर भविष्य का संकेत है, एक साइन पोस्ट है?
ये सच
अंत नहीं होता, कुछ कहानियां इंतजार मांगती हैं।